चर्चा करने का मौका बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं एक भक्त की पहचान क्या है। भगवद गीता का जो 10वां अध्याय है, जिसमें गीता के सार का वर्णन आता है, विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर कहते हैं, तो वहाँ वो कहते हैं कि पहले तो एक जो भक्त है, मुझे आध्यात्मिक जगतों का और भौतिक जगत का उद्गम के रूप में स्वीकार करता है, और दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। ये भक्तों का लक्षण है कि भक्त का एक लक्षण क्या है, मच्चित्ता, मतलब उसका जो चित्त है वो सदैव कृष्ण में लगा रहता है। तो रूप गोस्वामी कहते कैसा है वो, जैसे एक युवक किसी युवती से प्रेम करने लगता है और वो उस युवती को भूल नहीं पाता, हर क्षण हर मोमेंट वो उस युवती को सोचते रहता है और स्पॉन्टेनियस होता है। कभी कभी हम सोचते हैं अरे वो जो स्त्री के लिए आकर्षण होता है वैसा कृष्ण के लिए हृदय में आ जाए तो जीवन चंगा है, कितना अमेजिंग होगा। तो रूप गोस्वामी ने एक प्रार्थना भी लिखी है जिसमें वो कहते हैं हे कृष्ण, मेरा मन उसी प्रकार से आप में लग जाए जिस प्रकार से एक युवक का प्रेम किसी युवती में बहुत प्रगाढ़ता से लग जाता है। तो जो चित्त है वो भगवान में लगाना, यही जीवन की परम सिद्धि है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते मन मना भव मत भक्तो, हमेशा वो कहते कि मन को मुझ में लगाओ। तो लेकिन वो बहुत कठिन है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी उसमें उन्होंने 5 चीज़ें बोली थी जिसके द्वारा भगवान में चित्त बहुत 100% लग जाता है, या भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो क्विकली हृदय में जागृत हो जाती है। तो कौन कौन सी है वो 5 चीज़ें, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग, साधु साधु मंस जो भगवान के प्रति आसक्त हैं ऐसे भक्तों का संग करना, और दूसरा है नाम कीर्तन, भगवान के नामों का जप करना। कीर्तन तो हम करते हैं, मुर्दम टूट जाते हैं, करतल टूट जाते हैं, लेकिन हृदय में कुछ प्रभाव नहीं होता है ना, हृदय वैसे के वैसे ले, इतना लगता है इतना कीर्तन किया, इतना नाचा गाया, इतना प्रसाद पाया। सोचो कम से कम एक भक्त 1 किलो तो खाता ही होगा पूरे दिन, 10 साल वो जब भजन कर रहा है तो कितना किलो खा लिया होगा उसने प्रसाद, कई क्विंटल खाया होगा, लेकिन ऐसे लगता है कुछ परिवर्तन हो गया, हृदय वैसे की वैसे ही है। तो एक तो है कि नाम कीर्तन, और वो बहुत ही गंभीरता से करना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सारे कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो 2 प्रकार के भगवान के नाम हम उच्चारण करते हैं, एक है कीर्तन करते हैं और दूसरा जप करते हैं। तो जप करना ये भगवान के प्रति हमारी पर्सनल सेवा है, और जो नाम संकीर्तन भक्तों के साथ करना वो कृष्ण के प्रति हमारी सार्वजनिक एक प्रकार से ग्रुप की सेवा है। तो जो पर्सनल सेवा है वो बहुत अच्छे से हमें निभानी चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि भगवान यदि कोई नाम जप करता है नियमित, आदि पुराण में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति लेटे हुए नाम कर रहा है, कृष्ण कहते हैं मैं वहाँ बैठ के सुनता हूँ, मतलब हमें सावधान होना चाहिए कि मैं हरि नाम ले रहा हूँ तो मैं सुन ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ कौन ध्यान दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को हम इन्वाइट कर रहे हैं, है ना, कॉलिंग, हरे कृष्ण मंत्रा उच्चारण कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम कृष्ण को बुला रहे हैं। तो ये भावना होनी चाहिए जब हम हरि नाम लेते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि उतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति बैठ के जप करता है तो मैं खड़ा होकर सुनता हूँ हरि नाम को, और खड़ा होकर ही नहीं, यदि व्यक्ति खड़े होकर हरि नाम लेता है बहुत हृदय से तो मैं नाचने लगता हूँ, और कोई व्यक्ति नाचते हुए हरि नाम करता है और बहुत भगवान में तल्लीन है तो कहते मैं उस व्यक्ति का आलिंगन करता हूँ और अपने धाम ले जाता हूँ। तो सोचो कितनी कृपा है। वैसे कलयुग का कि जो इतने बद्ध है, इतने गिरे हुए हैं, कि वो सरलता से ये काम भी नहीं कर सकते, ओट हिलाने का काम भी नहीं उनसे होता, क्या भगवत धाम की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे वो, कितना मतलब सोच ही नहीं सकते कितने गिरे हुए हैं। तो ये दूसरी चीज़ है नाम संकीर्तन, और तीसरी है भागवत श्रवण, भागवत श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भागवतम का अध्ययन करना, और चौथी चीज़ है धामवास, भगवान के धाम में जाना, वहाँ निवास करना, क्योंकि जिसके द्वारा हमारे हृदय में अनासक्ति का भाव उदित होता है। अभी हम अपने घर को ही धाम बना लिया है, सोचते घर ही धाम है, धाम जाने की क्या आवश्यकता है, ऐसी आदत हो गई है लोगों की। तो इसलिए धाम में जाना चाहिए, क्योंकि धाम से हमारा प्रीति संबंध स्थापित होता है, और धाम वासियों से संबंध स्थापित होता है, और भगवान से संबंध स्थापित होता है। तो धामवास बोला गया है, और पांचवी चीज़ है श्रद्धा के साथ अर्चा विग्रह की सेवा करना, जो डेटीज है चाहे घर में है या फोटोग्राफ्स हैं, श्रद्धा के साथ रोज उनको कम से कम अगरबत्ती दिखाओ, उनको प्रणाम करो, उनके सामने जप करो, तो अटेंटिवनेस आता है हमारे चैंटिंग में, तो श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये पांच चीज़ों को यदि कोई भी व्यक्ति इनमें से एक भी कर ले गंभीरता से, तो अल्प एसोसिएशन से भी उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो सकती है, हाँ, लेकिन उसको गंभीरता से करना होगा। तो इसलिए चित्त भगवान में तभी लगेगा जब इन पांचों में से किसी कार्य को हम पकड़ लेते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने किस चीज़ को पकड़ा था, श्रवणम को पकड़ा था, कुछ भी हो जाए, बल्कि बीच में उन्होंने कहा जब उनको शाप मिला, तो परीक्षित महाराज गंगा के तट पर गए और सारे साधुओं से निवेदन किया कि गायतः विष्णु गाथा, अब विष्णु का गुणगान कीजिए, मुझे वो उड़ने वाले तक्षक, क्योंकि तक्षक को तो पंख थे, तक्षक ऐसा सर्व जो उड़ने वाला है, उड़कर आपके पास पहुंच जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा आपको काटने के लिए। तो ऐसे कहते ऐसे भयावह तक्षक से भी मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन आप कृष्ण कथा रोकिए मत, उस क्या करिए, गाते रहिए, मेरे लिए वही मेडिसिन है। तो ऐसे परीक्षित महाराज, तो ऐसे जो परीक्षित महाराज हैं, हाँ, उन्होंने श्रवणम को पकड़ा, कुछ भी हो जाए। तो उसी प्रकार से भगवत भक्ति में मैं आते हैं, तो किसी भी अंग को पकड़ो और उसके पीछे हाथ धो के लगो, उसी में सिद्धि है, उसी में परम सिद्धि है आपकी। क्योंकि भक्ति में लगने के बाद हमें लगता है कुछ मुझसे हो नहीं रहा है, तो कोई एक चीज़ को हमें स्वीकार करना चाहिए जो स्पॉन्टेनियस है, और उसी में लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो मन है या चित्त है भगवान में लग सकता है। तो भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, कि मदगत प्राणा, क्योंकि चित्त भगवान में लग गया तो भगवान के बिना उनका प्राण मदगत प्राणा, वो कहते मर जाएंगे ऐसे लोग यदि, हाँ, उनको यदि भगवान से संबंधित कार्य नहीं होंगे उनके पास, तो कहते हैं मेरे बिना उनका जीवन क्या है, मछली के समान है, भगवान कहते हैं। तो उस प्रकार से मदगत प्राणा, और वो करते क्या है, जब आपस में मिलते हैं तो बोधयंतः परस्परम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे से मिले तो वैसे ही भौतिक चर्चाएं तो बहुत करते हैं, एक दूसरे को बोध कराएं, किसका बोध कराएं, अपने जीवन के लक्ष्य का, भगवान के बारे में। तो बोधयंता परस्परम, और क्या करते हैं, कथयंतश्च माम नित्यम, निरंतर मेरी कथा मेरा गुणगान करते रहते हैं, कभी कभी नहीं, कैसे कई निरंतर, नित्यम बोला गया है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और ऐसी कथाओं में ही वो तुष्ट हो जाते हैं या आनंद अनुभव करते हैं। अदरवाइज हम जब इन चीज़ों में नहीं मग्न होंगे, इन चीज़ों में आनंद नहीं प्राप्त करेंगे, तो नेचुरली हम बाहर की चीज़ों में हमारा मन, हमारी इंद्रियां आनंद के लिए लालायित रहेगी। इवन ये यात्रा आना भी तो एक एंजॉयमेंट है, ट्रैवल करना भी तो एक भोग की वासना हमारे अंदर है ना, वहाँ के घर के भोग से हम वे हो गए, चलो दूसरी जगह जाके भोग करते हैं, तो यहाँ इंद्रियों को थोड़ा और अच्छा लगता है, नया स्थान, नई वैरायटीज, सब कुछ, हाँ, मन को भी थोड़ा ये लगता है। तो यदि मन भगवान में, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में मग्न नहीं होगा, तो नेचुरली वो बाहर की चीज़ों के लिए हैंकर करता रहेगा। एंकरिंग करता रहेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भक्त जब आपस में मिलते हैं तो वो निरंतर क्या करते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उसी में वो आनंद अनुभव करते। जब ऐसा आनंद अनुभव इसमें होने लगेगा तो हमारे बाहर के आनंद के लिए हम इतना अधिक आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि बाहर का आनंद भोगते भोगते शरीर बूढ़ा हो गया है, नहीं फिर भी आनंद नहीं मिला, इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखों को दिख नहीं रहा है, हड्डियां सारी बज रही है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, कितनी सारी स्ट्रगल है, तो भोग करते करते हम थक गए। तो इसलिए कोई व्यक्ति कह सकता है कि नहीं हमने तो बहुत समय बिता दिया, अभी तो हम इतना आयु हो गया, अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं अभी भी टाइम है। एक राजा थे खटवांग, भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है, वो खटवांग महाराज के पास केवल एक मुहूर्त था, 3 घंटे कुछ घंटों का समय था बस जीवित रहने के लिए। तो देवताओं ने उनको बुलाया था युद्ध के लिए, उन्होंने देवताओं के लिए युद्ध किया और देवताओं ने कहा आपने इतना हमारे लिए सेवा किया है, बताइए क्या आपको बोन चाहिए। कहते तो मुझे तो बताओ कि मेरे पास टाइम कितना बचा है मरने के लिए, बाकी तो छोड़ो क्या आई भी जाए तो मरूंगा तो क्या उसका लाभ है। कहते आपके पास कुछ मुहूर्त बचे हैं, 3 घंटे का एक मुहूर्त होता है ना, तो कुछ मुहूर्त है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कुछ और ने कामना की, आए और अपने यहाँ पृथ्वी पर आकर उन्होंने भगवान का भजन इतना किया। तो उनका स्पेशली उदाहरण भागवतम में है कि देखो ये व्यक्ति है, टाइम की परवाह नहीं कि मतलब बहुत कम समय उनके पास बचा था, लेकिन उसको उन्होंने बहुत सीरियसली लिया और भगवत प्राप्ति कर ली। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ये परम आवश्यक है कि हमें किसी ना किसी प्रकार से भगवान में जो चित्त है या मन है वो लगाना चाहिए। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो इसमें आनंद हमें उठाना चाहिए, अन्यथा हमारा मन ऐसा है कितना भी भोग करो वो कभी शांत होता ही नहीं है, वो तो फायर है, फायर और घी है। ये इंद्रिया ऐसी है कि जिनको एक बार आदत डाल दी तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उनको क्या करो, आध्यात्मिक कार्यों में अच्छी तरह से लिप्त कराओ। और ये यात्रा आने का ये भी एक उद्देश्य है कि इंद्रियों को सब कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें प्रोवाइड करना, आँखों के लिए भगवत दर्शन, भगवान के धाम का दर्शन, कानों से अधिक, क्योंकि मनन चिंतन वही होगा जो हमने देखा है और जो हमने सुना है। तो भौतिक जीवन में सारे कर्मी लोगों से बातें करते सुनते रहते, टेलीविजन देखते, मूवीज देखते, तो वही विचार आते और उसमें अधिक से अधिक क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति, उसके अलावा कुछ और है नहीं। इंद्रिय तृप्ति के विचारों से वो सारी चीज़ें भरी है, उसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं है। तो इसलिए जब हम होते विचार भी करते हैं तो केवल इंद्रिय तृप्ति का विचार करते हैं, लेकिन मन में जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है आज भगवान से संबंधित, उसको ऐसे स्मरण करना चाहिए। जैसे गाय, शास्त्र कहते हैं गाय जब खाती है, खा के फिर बैठ जाते हैं ना, तो क्या करते, शुगर क्या करते, जुगाली, हाँ वैसे होना चाहिए एकदम भक्त को, क्योंकि जो सुना है पढ़ा है उसका मनन करो, भगवान के बारे में सोचो चिंतन करो, तो हमेशा के लिए आपका रहेगा और आप भगवान के बारे में स्वाभाविक रूप से स्मरण कर पाओगे। तो वैसे ये धाम जगन्नाथपुरी इतना विशेष धाम है, वृंदावन से भी ज़्यादा दयालु है और जगन्नाथपुरी, क्यों वृंदावन धाम की स्थिति क्या है, वो जैसे को तैसा है, मतलब वृंदावन धाम कभी अपराधों को क्षमा नहीं करता, कुछ भी अपराध करो आपको दंड भुगतना ही भुगतना है वहाँ, हाँ कुछ भी गलती करो आपको पनिशमेंट निश्चित है वहाँ। और इसलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो तो ग्रोथ है, और कुछ भी गलती करते हो वृंदावन जाकर तो आपको क्या है, पनिशमेंट निश्चित है। तो इसलिए वैसे कहते हैं कि वो माधुर्य धाम है वृंदावन, वो तो बहुत परम हंसों के लिए है। इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा हम तो इतने साल रहे हम तो मायापुर चले जाते, यहाँ कोई रिजल्ट जल्दी आने वाला नहीं वृंदावन में। हाँ तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं ये जो 3 धाम है, जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है, मायापुर है, इसमें जो साधना के लिए, साधना के लिए जो अच्छा धाम है, स्थान है, वो कौन सा है? जगन्नाथपुरी। क्योंकि ये धाम की विशेषता क्या है कि यहाँ आकर भगवान के प्रति जो विरह की भावना है, सेपरेशन की भावना है, वो क्विकली हृदय में स्थापित हो जाती है। यदि गंभीरता से यहाँ आकर भजन करता है कोई व्यक्ति भक्तों के निर्देशन पर, हाँ, तो क्योंकि उन्नति का पता कैसे चलता है भगवत भजन में, कि आप कितना सेपरेशन महसूस कर रहे हो भगवान से, भगवान के नाम, कथा, सेवा आदि से, है ना। जैसे व्यक्ति सेपरेशन, अभी लोग इधर आ गए तो विरह हो रहा है उनको घर का, अपने रूम्स का, अपने फैसिलिटी का, अपनी पत्नी का, बच्चों का, इसका उसका, ना तो विरह हो रहा है, ऐसे लग रहा है कब वापस जाओ, कब उसे मिलो, कब वो स्थान में देखो। तो लेकिन वैसे भगवान के प्रति थोड़ा सा भी आ जाए ना अंश, समझना चाहिए इस व्यक्ति का जीवन परफेक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मतलब एक दिन अरे जप नहीं किया, भागवत नहीं पढ़ा, हाँ अच्छे से भक्तों से श्रवण नहीं किया, तो ऐसे लग रहा है चाहिए कि कुछ तो हो गया है मुझे, ऐसे हृदय में कुछ होने चाहिए। जैसे नहीं कि आपने प्रिय व्यक्ति से नहीं मिले तो कैसे होता है हृदय में, है ना अनुभव सबको, तो वैसे ही है। ऐसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी पूरी तरह से काम, क्रोध आदि सबसे ढका हुआ है ये जो हृदय है। तो इसलिए वो विरह की जो भावना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भक्ति में उन्नति कर रहा हूँ, तो कहाँ से मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा? प्रभुपाद कहते कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि बस ये पता करो कि तुम्हारे अंदर काम और लोग, काम वासना और जो लोभ है, ग्रीड है, कितना कम हो रहा है। ये दो जितने कम हो रहे हैं वो समझो कि आपका भगवत भजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दो चीजें कम नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है अभी कोई परिवर्तन नहीं है हमें। तो इसलिए प्रभुपाद को पूछा था कि प्रभुपाद बताइए कि कैसे हमें पता चले कि मैं भक्ति में उन्नति कर रहा हूँ या नहीं, कोई किसी से पूछे, सर्टिफिकेट कुछ मिले हमें। प्रभुपाद कहते कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ये दो चीज़ें खुद ही देख लो। कौन सी दो चीज़ें? काम वासना, लस्ट, और दूसरा है ग्रेड, लोभ। ये दो चीज़ें कम हो रही हैं, उसका मतलब है आप भगवान भक्ति के पाथ में क्या हो रहे हो, उन्नति कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, हाँ, ये स्वाभाविक है। इस प्रकार से वास्तव में जब हम धाम आते हैं, और ये जगन्नाथपुरी धाम है, वो इस भावना को हमारे हृदय में क्या करता है, स्थापित करता है, विरह की भावना। विरह की भावना वैसे देखा जाए तो ये पूरा हमारा गौड़िया संप्रदाय इसी पर बसा है। विरह, महाप्रभु यहाँ रहे, किससे विरह महसूस कर रहे थे? राधा रानी के भाव में वो थे, लेकिन कृष्ण से विरह महसूस कर रहे थे। यहाँ दो पर्सनैलिटीज हैं, एक तो जगन्नाथ जी हैं, वो उनको विरह है, किससे विरह है? राधा रानी से, इसलिए तो उनका रूप ऐसा इतना गोल गोल आके गोल गोल हो गया, क्यों? फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी। और ये जो कृष्ण, ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो राधा रानी का मूड लेकर कृष्ण से विरह अनुभव कर रही है। इस प्रकार से ये इस धाम का नाम एक भी है, विरह क्षेत्र भी कहते हैं यहाँ इस धाम को। जगन्नाथपुरी के तो ऐसे कई सारे नाम हैं, विरह क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है, शंख क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, नीलाचल है, और क्या, नीलाद्री है, कितने सारे नाम हैं इस धाम के, और हर नाम के बहुत अमेजिंग अमेजिंग मीनिंग और अर्थ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये दोनों धाम पाए जाते हैं, वृंदावन भी पाया जाता है यहाँ, और दूसरा जगन्नाथपुरी भी। तो चैतन्य महाप्रभु जब आते थे यहाँ, तो चैतन्य महाप्रभु को तो ऐश्वर्य अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि राधा रानी वृंदावन वासियों को वृंदावन के अलावा कोई द्वारका वगैरह अच्छा नहीं लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ टेम्पल जाते थे तो वो द्वारका महसूस करते थे कि वो कुरुक्षेत्र है। वो कौन सा स्थान है? कुरुक्षेत्र। और महाप्रभु यहाँ आते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस ये गुंडीचा मंदिर है, इस स्थान का नाम चैतन्य महाप्रभु ने दिया था सुंदराचल। क्या नाम था? सुंदराचल, या सुंदराचल मिस वृंदावन। तो महाप्रभु को जब वृंदावन के विरह की अनुभूति होती थी तो महाप्रभु दो जगह जाते थे, एक तो ये स्थान है और दूसरा कल हम रात को गए थे टोटा गोपीनाथ, हाँ जहाँ गोपीनाथ है और जहाँ बागान वगैरह है, तो वहाँ वृंदावन की अनुभूति चैतन्य महाप्रभु करते थे। तो वहाँ उसके सामने एक पर्वत है, चटक पर्वत। तो ऐसा सारा जो वृंदावन का अनुभव चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में होता था। और महाप्रभु कभी सी के किनारे जाते थे तो महाप्रभु समंदर के उस नीले जल को देख के उनको कौन सा आभास होता था, यमुना का। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की भावना को भी यह अनुभव करते थे। हाँ, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास किए और निवास करके चैतन्य महाप्रभु ने सबको जो ये चीज़ की शिक्षा दी, विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ के प्रति कैसे विरह और प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो ऐसे महाप्रभु की कई सारी लीला जगन्नाथपुरी में है और विशेष रूप से यह गुंडीचा, तो ये दो स्थान है। जब राजा इंद्रद्युम्न, जाना है ना इंद्रद्युम्न के बारे में, इंद्रद्युम्न महाराज पता है जिनके कारण जगन्नाथ जी यहाँ प्रकट है। राजा अभी तो टाइम ही नहीं मिला हमारे सारे लोगों को, कुछ थोड़ा सा सुनाना चाहिए था इंद्रद्युम्न ना। तो जो राजा इंद्रद्युम्न थे उन्होंने डिजायर व्यक्त की थी, वो कहाँ के राजा थे, अवंती, उज्जैन के राजा थे। तो वहाँ उन्होंने डिजायर व्यक्त की, मैं ऐसे देखना चाहता हूँ अपने आंखों से भगवान को आई टू आई डायरेक्ट। तो फिर आता है एक तीर्थयात्री के द्वारा पता चलता है, फिर वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचते हैं अपने मंत्री की सहायता से। और जब पहली बार राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि के साथ उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, कहाँ से, उज्जैन से, तब राजा और रानी, उनके वाइफ का नाम था गुंडीचा, क्या नाम था, गुंडीचा। तो राजा और रानी ये दोनों निकले कि हमें जाना है यहाँ इस स्थान में जहाँ भगवान नील माधव के रूप में निवास करते, उनको दर्शन करना है। तो जितने भी प्रजाजन थे कहते हमें कुछ जीवन नहीं चाहिए हमारा, उन्होंने प्रजाजनों ने सब कुछ त्याग कर वो राजा और रानी के साथ निकले उज्जैन से और यहाँ आए। पहले तो आए वो कटक के पास महानदी है उसके तट पर आए, तो वहाँ लोकल जो उड़ीसा का राजा था उनके द्वारा पता चला कि जिस भगवान को आप देखने जा रहे हैं, जिनकी कामना कर रहे हो, वो इस जगह यहाँ से क्या हो गए हैं, अप्रकट हो गए हैं। इसलिए भगवान ने कहा, उस राजा ने कहा अभी जाने का क्या लाभ है, लेकिन नारद मुनि कहते नहीं चलो आप। तो नारद मुनि इस स्थान को नीलाचल कहते हैं या नील पर्वत वगैरह ना, तो नारद मुनि उनको लेकर यहाँ आते हैं, इस स्थान में आते हैं नारद मुनि, उनको लेके आते हैं यहाँ। तो नारद मुनि ने कहा हे राजा इंद्रद्युम्न आप मेरे साथ चलो। तो इंद्रद्युम्न आए इस स्थान पर और यहाँ आए तो देखा कि ये तो बहुत बड़ा जंगल है, तो यहाँ क्या करेंगे ऐसे जंगल में। तो फिर नारद ने कहा कि यहाँ हम यज्ञ करेंगे जिसके द्वारा भगवान प्रकट हो जाएंगे उस यज्ञ से, और फिर उनकी आराधना वगैरह करेंगे। तो ये जो गुंडीचा मंदिर का एरिया है ना, इसको सबसे पहले स्थापित किया और इसको महावेदी कहा गया है। महावेदी मीन्स राजा इंद्रद्युम्न सर्वप्रथम जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ सबसे पहले यज्ञ किया, और यज्ञ किया तो यज्ञ से भगवान नरसिम्हा देव निकले। हाँ, वो यज्ञ नरसिम्हा, हाँ इधर है ना मंदिर हो रहा, तो यज्ञ नरसिम्हा प्रकट होते हैं, ऐसे सुंदर है। तो ऐसे नरसिम्हा देव निकलते हैं जिनकी आराधना उनकी स्थापना करते हैं नारद के आधार पर आदेश पर। और फिर बाद में इसी स्थान, ये जगन्नाथ जी का बर्थ प्लेस है, कौन सा प्लेस है, ये बर्थ प्लेस ये गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ जी का प्राकट्य यहाँ हुआ था। हाँ, यहाँ शुरुआत में इंद्रद्युम्न जब महावेदी बनाई, यज्ञादि किए, फिर जाकर वो सारा स्टोरी हम हमेशा सुनते हैं कि कैसे वो समंदर से वो तीन ऊड़ वगैरह आए और फिर वो कार्विंग किया वगैरह, सब यहाँ घटित हुआ था। और फिर वहाँ भगवान की स्थापना की, क्योंकि कहा कि विशाल मंदिर का निर्माण करो, तो भगवान इंद्रद्युम्न ने बहुत विशाल, अभी ये मंदिर तो 1100 साल पुराना है और इंद्रद्युम्न तो सत्य युगा में थे, मतलब कितने हजारों करोड़ों करोड़ों साल पूर्व। तो ऐसे इंद्रद्युम्न महाराज ने उनके लिए मंदिर बनाया था और मंदिर बनाकर वो चले गए इनवाइट करने के लिए, किसको, ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी को इनवाइट करने के लिए गए हैं, तो ब्रह्मा लोग जाना आना इतना लंबा सफर है, तब तक तो कई युग बीत गए हैं, वो मंदिर भी ढक गया बालू से ढक गया। और तो भी सोचा कि ब्रह्मा ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी तुम राजा नहीं रहे हो वहाँ के, तुम्हारे बाद हजारों राजा आ गए चले गए। कहते अभी रिसेंट जो राजा है उसका नाम है गलमाधव, हाँ गलमाधव नाम का राजा अभी इस एरिया में राज्य कर रहा है। तो राजा एक दिन अपने घोड़े में बैठ के जा रहा था तेजी तेजी से, तो घोड़े का ऐसे कहते हैं मिट्टी के ऊपर से जा रहा था, तो घोड़े का पाव लगाया कुछ, तो वो जो कलश होता है ना ऊपर मंदिर का, तो वो थोड़ा सा दिखाई दिया बालू से, तो वहां वो रुका और फिर उसकी खुदाई की तो विशाल मंदिर प्राप्त हुआ। और फिर ये आते वापस इंद्रद्युम्न महाराज, यहाँ देखते कि अरे ये तो मेरा मंदिर, अभी इन्होंने कहा, वो राजा कहने लगा ये मेरा मंदिर है, और इंद्रद्युम्न कहते मैंने बनवाया था। तो फाइनली वहाँ एक पेड़ था जिसके ऊपर एक काक भुषंडी कौवा बैठा हुआ था, वो रामायण के समय भी था, सब युगों में रहता है। उन्होंने कहा मैं तो सबको जानता हूँ, ये मंदिर तो इंद्रद्युम्न ने बनाया हुआ है। तो फिर इंद्रद्युम्न ने बनाया हुआ मंदिर वो स्वीकार करते हैं और वहाँ जगन्नाथ की स्थापना करते हैं। तो फिर भगवान वहाँ रहते हैं, तो यहाँ गुंडीचा के लिए, क्योंकि गुंडीचा देवी, गुंडीचा रानी बहुत महान भक्त थे। जब इंद्रद्युम्न ने 3 वर मांगे, उनकी तो डिजायर थी कि मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन उनके हस्बैंड ने क्या मांगा था वर भगवान से, मुझे कोई, क्योंकि भगवान जब स्थापित हो गए, सब कुछ हो गए, भगवान इतने आनंदित थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो जगन्नाथ जी ने कहा राजा इंद्रद्युम्न तुम्हारा डिवोशन और इतनी सेवा भावना देखकर मैं तो आपका ऋणी हो गया हूँ, बताओ आपके लिए क्या मैं करूँ। क्योंकि भगवान को आनंद आता है भक्त की सेवा करके, और भक्तों को आनंद आता है भगवान की सेवा करके। चैतन्य चरितामृत यही आता है आदि लीला में कि वो कॉम्पिटिशन चलता रहता है और एक व्यक्ति हर जाता है, कौन हर सकते है इसमें, भगवान हर जाते हैं। वो वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज आदि लीला में चैतन्य चरितामृत के गोपियों का इतना सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कृष्ण सोचते हैं कि मेरी सेवा करके इनको इतना आनंद देख रहा हूँ, इनकी आंखों में चेहरे में इतना आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो भगवान कुछ उनके लिए करते हैं। और फिर वो करती है कुछ गोपिकाएं उनकी सेवा, तो और गोपिकाएं आनंदित होती है, तो भगवान को लालसा हो जाती कि अरे मुझसे अधिक इनको आनंद आ रहा है, मुझे इनके जैसा बनना है। तो वही कृष्ण क्या बनते हैं, चैतन्य महाप्रभु, वो आनंद जानने के लिए, वो आनंद समझने के लिए। और वास्तव में ये पहली बार कृष्ण को पता चला जब कृष्ण द्वारका में थे, सत्यभामा के महल से कृष्ण रुक्मिणी के महल में जाते हैं सुबह सुबह, जब सुबह सुबह रुक्मिणी के महल में जाए तो रुक्मिणी इतनी आनंदित हो गई, उन्होंने बहुत सारा फ्लावर्स रोड बनाया, फ्लावर्स का दिए जलाए, जल ला दिया, भगवान के स्वागत के लिए बहुत चीज़ें की। भगवान आए सत्यभामा के महल से रुक्मिणी के महल में सुबह सुबह, उनका स्वागत आदि किया, ये चैतन्य मंगल में ये लीला आती हैं, उनका आरती वगैरह उतारा सब किया, और भगवान को सुंदर आसन दिया बैठने के लिए, और आसन देकर उनके चरण उसने पकड़े रुक्मिणी देवी ने, और चरण पकड़े, चरण को ऐसे अपने हाथों में रखा और वो छाती में ऐसे लगा रही थी कृष्ण के चरणों को रुक्मिणी देवी, तो वो लगा रही थी और बार बार ऐसे उनको चूम रही थी और अपने माथे में लगा रही थी, और रोए जा रही है। कृष्ण कहते रुक्मिणी क्या हो गया, कहते आप कभी नहीं समझेंगे, वो समझने के लिए कहते आपके चरण कमलों में इतना अधिक आनंद और ये छुपा हुआ है, आपको आप समझ में ही नहीं आएगा आपको ये। हाँ तो कृष्ण चकित हो जाते, कहते ये पहली चीज, कहते मेरे अपमान कर रहे हो, ऐसी कौन सी चीज है इस त्रिभुवन में जो मुझे पता नहीं है, इसलिए वो कहते मैं तो ज्ञाता हूँ, सारे जगत का ज्ञाता हूँ ना, परम ज्ञाता हूँ मैं, लेकिन क्या ऐसी चीजें एक जो मुझसे छुपी हुई है, तो कहते हैं कि जो आपके चरणों में जो आनंद है ना सेवा करने से जो एक भक्त को मिलता है, वो आपको कभी अनुभव नहीं होगा। और ये जानने के लिए पहले तो भगवान कहते कि और बोलो और थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो वहाँ रुक्मिणी देवी भगवान के चरण कमलों की महिमा की बहुत उदाहरण बोलती हैं, बहुत कुछ समझाती है। फिर कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी पहली बार मैंने लाइफ में ऐसी कोई चीज सुनी है, आज तक मैंने ऐसा सुना नहीं। तो भगवान आनंदित हो जाते हैं और फिर कहते कि कैसे मुझे पता चलेगा। राधा रानी कहते एक डिवोटी का हृदय आपको अपने हृदय में कहते हार्ट ट्रांसप्लांट करना ना, तो वो करना पड़ेगा। किसका हृदय? तो कहते राधा रानी को। डायरेक्ट रुक्मिणी ने एक ही व्यक्ति का नाम लिया है, यदि हमें कोई डाउट हो, इसलिए राधा रानी कृष्ण को जान सकती हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो रुक्मिणी किसी और का नाम ले सकती थी, कोई और डिवोटी ये वो कई सारे डिवोटीज नहीं, रुक्मिणी ने वो भी एक अपने आप में इतनी बड़ी भक्त है, इतनी भगवान की महान शक्ति है, विभूति है, लेकिन फिर भी उसने किसका नाम लिया? राधा रानी का। उनको पता है राधा रानी का स्तर क्या है, राधा रानी की टॉप मोस्ट स्थिति क्या है। तो ऐसे राधा रानी का नाम लेते ही कृष्ण ऐसे कांपने लगते हैं वहाँ रुक्मिणी के सामने। और ऐसा हो रहा था तो उसी समय एक भक्त पहुंचे। कौन पहुंचे होंगे? नारद। कुछ भी ऐसा कुछ होता है वहाँ एक भक्त पहुंच जाता है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में जो जैसे कुकिंग में आप करते हो तो मसाले नहीं हो तो टेस्ट नहीं आता ना, तो भगवान की जितनी लीला होती है उसमें मसाला डालने का फ्लेवर डालने का सेवा किसके पास है? नारद के पास। जो आप कोई भी पुराण उठा लो, वृंदावन लीला, जहाँ मर्जी लीला उठाओ, ये नारद का काम ही आके फ्लेवर ऐड करते हैं, तो भक्तों को आनंद आता है, कृष्ण को भी आनंद आता है। तो ऐसे कृष्ण जब जानते हैं और सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सेवा का जो भावना है बहुत अधिक है, उत्तम है, जिसके द्वारा भक्त विजय प्राप्त करता है। तो इंद्रद्युम्न ने बोला कि आपकी सेवा देखकर ये सब देख के मैं तो हैरान हो गया हूँ, मांगो। तो अभी ये इंद्रद्युम्न एक्चुअली भक्त का गुण है, मतलब भक्ति में उन्नति करते हैं तो अपने लिए वो करने की भावना उसकी खत्म होने लगती है, क्योंकि जितना हम अधिक भोग की भावना और त्याग की भावना का पता कैसे चलता है, सेवा भावना और भोग की भावना, जितना अधिक अपने आप को हम केंद्रित करते हैं हर सिचुएशन में, एवरीडे लाइफ में या किसी भी स्थिति में अपने आप को केंद्र बिंदु बनाते और सब चीज़ें हम अपने भोग के लिए, अपने नाम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए चाहते हैं, तो समझना चाहिए भोग भावना मेरे हृदय में बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही दूसरों के लिए कुछ करने की भावना आती है, सैक्रिफाइस करने की भाव, सेवा करने का भाव दूसरों के लिए, तो समझना कि भगवत भक्ति बढ़ रही है। तो इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज के हृदय भावना देखो, उन्होंने जो भी भगवान से मांगा अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तीनों चीज़ें भगवान से मांगे, खुद के लिए कोई एक भी नहीं थी उसमें से। और पहली चीज़ मांगी उन्होंने, मैंने कई बार बोला हूँ, पहली चीज़ क्या मांगी थी? भगवान मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, है ना। जगन्नाथ जी तो सुन के हैरान हो गए कि सारा जगत, हाँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गृहस्थ आश्रम का मतलब ही है, विवाह करने का मतलब है पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पत्नी क्यों होनी चाहिए? पुत्र प्राप्ति करने के लिए, पुत्र पिंड प्रदायते, ऐसा आता है ना, पुत्र की क्यों चाहिए? पिंड दान करें ताकि आगे नरक वरक ना जाना पड़े, स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ें शास्त्र में वर्णित की गई हैं, लेकिन इनको कोई डर नहीं था, इन्होंने बोला भगवान मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। तो भगवान सोचे कि इसको कोई पुत्र नहीं चाहिए, इसका मतलब है मैं ही क्या बनूंगा, इसका पुत्र बनूंगा, है ना। तो मतलब बहुत डिवोटी भी बोलते तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ वो कृष्ण को अपना बना लेते हैं, कृष्ण अपने हो जाए तो फिर क्या चाहिए इस सांसारिक जीवन में। तो ऐसे इन्होंने कहा, इन्होंने ये बोला कि मेरा कोई पुत्र आदि होगा तो इतना मंदिर, आपकी सेवा, इतना सुविधा, इतना धन, फैसिलिटी, वो क्या करेंगे? भोग करेंगे, अपना अधिकार उसमें जबाएंगे। तो कहते नहीं चाहिए, हाँ मुझे नहीं चाहिए। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने मांगी थी, क्या था दूसरी चीज़? मैंने संडे भी बोला था,
ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन देंगे,
हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके किवाड़ जो है वो खुले रहने चाहिए, अधिक से अधिक दर्शन मिले ये जगत के लोगों को, क्योंकि तव दर्शनात् मुक्ति, हे भगवान आपका दर्शन करने मात्र से जीव इस सांसारिक यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ के दर्शन हमेशा खुले रहते हैं, भक्त लोग जाते हैं और देखते रहते हैं। जगन्नाथ को देखना मीन्स उनके आईज को देखो, उनकी आंखों में ना बहुत कंपैशन है, आती ऐसी गोल क्यों है? क्योंकि बहुत उनमें दया करुणा भरी पड़ी है भगवान जगन्नाथ में। और तीसरी चीज क्या मांगी थी उन्होंने? आपके हाथ जो है हमेशा गीले रहे, ताकि कभी भी आप खाते रहो, पूरे दिन खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, क्योंकि लोगों को एक ही चीज अच्छी लगती है, क्या? खाते रहो, खाते रहो, खाने ही अच्छा लगता है। जहाँ भी ले जाओ, सबसे पहले उठते ही पहले पत्थर खाना है आज। ये भूख नाम की चीज नहीं बनाते ना, तो हमें इतना मेहनत नहीं करता कोई व्यक्ति, है ना? तो ये बहुत स्ट्रगल है। तो भगवान बहुत दया पूर्वक खुद स्वीकार करते, इतना खाते हैं। वो खुद के लिए नहीं खा रहे, किसके लिए खा रहे? भगवान खा भी रहे हमारे लिए। आप देखो, हम अपने लिए खाते हैं, तो भगवान खाते भी हैं, तो केवल जीवों का कल्याण करने के लिए। तो ऐसी चीजें महाराज इंद्रदुम्न ने भगवान से मांगे थे। और इसलिए वास्तव में ये क्या है, इन तीनों चीजों को पकड़ो तो मतलब भक्ति मांगी है, सेवा मांगी है उन्होंने, ये सर्विस है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जन्म न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तुल। हे कृष्णा, मुझे बस आपकी अहेतु की भक्ति दो, जिसमें सब कुछ छुपा हुआ है। तो ऐसी महाराज इंद्रदुम्न की भावना थी। अभी गुंडीचा का प्रश्न रह गया। कुछ डिसीजन पति अकेला लेता है ना, तो पत्नी को दिक्कत होती है, नहीं? तो भगवान ने सोचा, अरे पुत्र नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन पत्नी श्री का स्वभाव है ना, उनको चिल्ड्रंस चाहिए। तो भगवान ने कहा, अच्छा गुंडीचा देवी, आप चिंता मत करो, आज से ये कृष्ण बलराम और मैं क्या हूँ? आपके पुत्र हूँ। और ये पुत्र का ये जो निर्वाह करने के लिए जो पुत्र का जो स्थिति है, हम यहाँ आएंगे आपके पास। ये गुंडीचा यहाँ उनका निवास था, यहाँ आएंगे आपके घर में और 7 दिन के लिए रहेंगे लगभग। इसलिए भगवान जगन्नाथ वो जो अपना स्थान है, श्री मंदिर है, उसको श्री मंदिर कहते हैं। श्री मीन्स लक्ष्मी, जिसमें लक्ष्मी का वर्चस्व है। जैसे घर में, घर की मुखिया कौन होती है? पति कह सकता है मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन चलती किसकी है बताइए माता जी? प्रभु नहीं, माताओं की चलती है ना, ऑर्गेनाइज करना सब कुछ चीजें, देखो उनकी चलती है। तो वैसे इसलिए इस मंदिर का नाम श्री मंदिर है, श्रीओं की चलती है, श्री मीन्स लक्ष्मी एक्चुअली। तो वहाँ श्री मंदिर, तो भगवान भी जगन्नाथ जी उनके कंट्रोल में है लक्ष्मी देवी के। बहुत अमेजिंग था, मैं लास्ट ईयर रथ यात्रा में था, मतलब लाइफ में बहुत सालों की डिजायर थी। पिछले साल पूरा मैं रथ यात्रा के 10-12 दिन इधर ही रहा, पूरा रथ यात्रा यहाँ आना और वो देखना, अनुभव करना, फिर भगवान 7 दिन यहाँ थे रोज। यहाँ तो अभी ऐसे लग रहा है रथ यात्रा, भगवान यहाँ पहुँचते आके देखो, उस मंदिर में कोई नहीं जाता, एक भी व्यक्ति नहीं दिखेगा वहाँ, हजारों लोग यहाँ, सारे शॉप्स वगैरह प्रसाद चहल पहल हो रही है। और यहाँ दर्शन क्या है, बहुत नज़दीक से होते हैं, वो भगवान बहुत अंदर है, इसका गर्भगृह भी छोटा है, सब कुछ बड़ा बड़ा और बहुत क्लियर रहता है और यहाँ इजीली होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ आकर एक बार दर्शन करते हैं तो कई हजारों बार वहाँ दर्शन करने के समान है। हाँ, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गुंडीचा में आकर भगवान जो विशेष रूप से आते हैं, यहाँ अंदर बैठते हैं, तो एक बार आके क्या करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। तो मैं स्पेशली रहा था इस बार, और फिर भगवान इस गेट से अंदर आते हैं और जो दूसरा गेट है वहाँ से बाहर निकलते हैं, उधर रथ होते हैं। तो फिर भगवान पहुँचते हैं ना, पहुँचते हैं तो उसके दूसरे दिन क्या करते हैं भगवान, वो सोना वेश गोल्ड पहनते हैं, इतना गोल्ड पहना था, मैं हैरान हो गया। और वो देखने के लिए आपको ये सारा रोड बंद रहता है, कोई गाड़ी वगैरह नहीं, आपको चलना यहाँ से चल के उस मंदिर में, वहाँ जाके दर्शन, भगवान बाहर ही रहते रथ के ऊपर 2-3 दिन, और वहाँ ही आपको दर्शन करना होता है। हजारों हजारों किलो भगवान गोल्ड पहनते हैं, इतने बड़े हाथ पाँव और बहुत कुछ पहनते हैं ऐसे ना, गोल्ड के सारे इतने बड़े, बहुत कुछ पहनते हैं, और वो दर्शन करना अमेजिंग है। तो सोना वेश, फिर उसके बाद मैं रहा, मतलब रहा कि भगवान को मुझे देखना है, क्योंकि पढ़ा तो है बहुत कुछ चीज़ें कि हाँ भगवान जाते भी है बहुत अद्भुत रूप से। जब भगवान अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो उनको एंट्री नहीं होती, क्योंकि भगवान जब वहाँ से निकलते रथ के लिए, तो हमने स्नान मंडप देखा, तो भगवान ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान करते हैं वहाँ, हाँ, स्नान करना तो एक बहाना है ताकि उनको वो द्वारका छोड़ने का मन कर रहा था ना, बहुत दिन घर में रहो तो लगता ना यात्रा में निकलो, अभी बहुत हो गया। तो भगवान भी साल में एक बार यात्रा में निकलते हैं, तो वो स्नान करते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं ऐसे कहते हैं, फिर भगवान का 15 दिन उनको मेडिसिन वगैरह खिलाए जाते, कोई प्रसाद नहीं मिलता आपको, चावल वावल कुछ नहीं मिलता 15 दिन। मैं एक बार स्पेशली आके रहा कि क्या होता है उस समय, वो कुछ नहीं मिलता, मैं बाहर ही खाना पड़ता था प्रसाद इस्कॉन में या फिर इधर उधर ऐसे। तो फिर भगवान, और उस समय एक्चुअली भगवान का पेंट करते हैं, भगवान को उस समय 15 दिन पेंट वगैरह होता है ना, नया कुछ सब कुछ किया जाता है। इसलिए जो फिर रथ यात्रा के एक दिन पहले भगवान दर्शन देते, 15 दिन के बाद, उसको नेत्रोत्सव कहते हैं, आँखों को आनंद देने वाला वो है फेस्टिवल है। तो फिर भगवान रथ यात्रा के दिन रथ के ऊपर बैठ के फिर वहाँ आते और परमिशन लेकर निकलते घर से, किसका परमिशन? लक्ष्मी देवी का। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी को हमेशा डाउट रहता है मेरा पति कहाँ तो जा रहा हो, जाता होगा ना छुपके से, क्योंकि ये वृंदावन का है, वृंदावन में तो इतनी सारी गोपिका ये वो बहुत कुछ सुना था लक्ष्मी ने, कहते अकेला, इसलिए भगवान ने क्या कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा मेरी बहन साथ जाएगी, और कौन? भाई बलराम। तभी लक्ष्मी को लगा गया भाई बहन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान की तुलना की है उस मधुमक्खी से, वो एक फूल पर नहीं बैठते हैं, हजारों फूलों का आस्वादन करते हैं। इसलिए राधा रानी को मायापुर धाम बनाना पड़ा था, जब उन्होंने देखा वो विरजा गोपी के साथ है, ओ अच्छा, तो उन्होंने क्या बहुत गुस्सा हो गई, तो विरजा राधा रानी को देख के ही नदी बन गई, विरजा नदी बन गई। और फिर राधा रानी ने सारे गोपियों को लिया और जाके गंगा यमुना के बीच में मायापुर धाम बनाया कि अभी वो इधर उधर नहीं जाएंगे, मेरे पास ही रहेंगे। तो ऐसे परमिशन लेकर वो बाहर निकलते हैं, और अभी लक्ष्मी को कहते बस अभी ना बहुत 15 दिन बीमार वगैरह था, अभी आ रहा हूँ बस 2-3 दिन में, 2 दिन में आऊँगा ना घूम के वापस। देखो ये सब लोग जा रहे हैं, तो फिर आते बाहर आते तो भगवान को रहा नहीं जाता, और क्योंकि ये वृंदावन है और वो क्या है, द्वारका है, या वो कुरुक्षेत्र है, ये वृंदावन है, तो ये स्थान ब्रजवासियों का है। तो वहाँ से भगवान निकलते यहाँ आते हैं, और यहाँ फिर एक दिन के लिए, ऐसे कहते हैं कि एक दिन के लिए बोल के आए थे। अभी कई बार होता है ना, यात्रा में जा रहा हूँ 2 दिन में वापस आ जाऊँगा, पत्नी चिंता करते, अभी तो फ़ोन है, पहले अच्छा था फ़ोन नहीं थे, गया तो गया। फिर तो फिर भगवान आए यहाँ, और आए तो पूरा 7 दिन रहे यहाँ, और फिर आने का एक दिन, जाने का एक दिन, ऐसे 9 दिन ऐसे बीतते हैं। हाँ, तो ऐसे जब इतना समय हो गया, पहले तो 4 दिन बीते हैं, तो लक्ष्मी ने देखा कि अभी तक मेरे पति वापस नहीं आए, तो उन्होंने अपनी सारी सेना ली, पालकी में बैठती है यहाँ लक्ष्मी, जो हम देखते हैं ना डेटीज, उनका उत्सव विग्रह है, वो पालकी में बैठ के आता है, और वो मेन रोड से नहीं आता ताकि जगन्नाथ को पता ना चले कि पत्नी आ रही गुस्से में वहाँ से। और महाप्रभु चैतन्य को सबसे अच्छा आनंद आता था जो उसका गुस्सा देखने में। लक्ष्मी 4 दिन के बाद आती है, और वो पूरा ऐसे सारे गलियों से होते होते आएगी, यहाँ रथ होते हैं, और आकर लिटरली आज भी उनके सेवक उनके साथ आते हैं, हट्टे कट्टे पंडाल ऐसे, और आके रथ का, उस समय तो रथ ही तोड़ती थी काफ़ी सारा, अभी तो रथ का एक पार्ट होता है उसको तोड़ देते हैं वो लोग। यहाँ लक्ष्मी आते ही देखते कि अच्छा ये अंदर है, अंदर नहीं आती, वो रथ को तोड़ती थी, एक पार्ट तोड़ती है और फिर गुस्से में वापस जाती है, कहती अभी उसको आने दो, उसको घर में नहीं घुसने दूंगी। और वो मुझे बड़ा आनंद था कि बहुत बड़ा था चैतन्य चरितमृत में, कैसे घुसने नहीं देती, कैसे होता है। तो पूरी अभी इस साल जब मैं आया था, रात के कम से कम 1:30 बज गए, भगवान रथ के ऊपर से थोड़ा सा हिल के, अभी रथ के ऊपर जहाँ बिठाते हैं ना उनको, थोड़ा सा ऐसे रथ के ऊपर ही आगे पीछे से थोड़ा आगे हो जाते, देखते हैं कि दरवाजा खुला है कि नहीं, सिंह द्वार बंद ही था, जो मेन गेट है पूरा टोटली बंद, और लक्ष्मी देवी गुस्से में थी, एक तो अंदर नहीं ले रही थी, और बड़ा कमाल का होता है भगवान को एक विशेष मुकुट पहनते हैं, टाहिया, क्या कहते हैं, टाहिया, वो बड़ा फ्लावर ऐसे डिफरेंट होता है, वो वाइट टिश होता है, वो पहनते, इतना बड़ा मुकुट होता है, बहुत ही बड़ा, और उससे जगन्नाथ जी इतने सुंदर लगते हैं। तो फिर भगवान पहनते वगैरह सब, अभी के अंदर घुसना है ना, जैसे वापस जाना है, सैंड विंड मार के बाल विल करके व्यक्ति घर में घुसता है, पता ना चले क्या किया क्या नहीं किया। वैसे जगन्नाथ जी पूरे तैयार थे, वो थोड़ा सा आगे हो गए, देखा वो पूरे दरवाजे बंद हैं, और फिर लक्ष्मी जहाँ वो कुकिंग हो रहा था ना, कल गए थे हम किचन कुकिंग, तो वहाँ जहाँ वो ऊपर से आप देखोगे तो सिंह द्वार देखता है ना, बाहर दीवार है, तो वहाँ आ जाती है लक्ष्मी पूरा पालकी में, और वहाँ आकर खड़ी हो जाती है, और मसाले जलती है वहाँ, मसाले लेकर आती है, आज भी सारे मसाले ऐसी जलती है। उसके पंडा अलग है, जगन्नाथ की पंडा अलग है, उसके सारे सेवक आते हैं ऐसे वेशभूषा सुंदर सुंदर धारण करके, और उसको ऐसे पालकी में, और वहाँ से कहते ऐसे आती लाएंगे, नो एंट्री के, लक्ष्मी कह रही है नो एंट्री, वो जगन्नाथ जी वापस उनको बैठना पड़ता, फिर आते हैं। तो ऐसे लगभग 1-1.5 घंटा हो गया उनका कन्वर्सेशन चल रहा था, यहाँ से जगन्नाथ को उन्होंने पूरा आगे कर दिया रथ में, अभी सीट से हटा दिया, आगे खड़े हैं, और वहाँ से लक्ष्मी, वो आपस में पता नहीं क्या बातें हो रही थी, वो मनाही कर रहे थे। फिर फाइनली भगवान क्या करते हैं, फिर रसगुल्ले भेजते हैं। उस दिन तो जिस दिन ये होता है ना अंदर जाने का दिन, उस दिन पूरे दिन आप देखो रसगुल्ले खाते रहोगे आप, वो हर कोई आता है रसगुल्ले ऑफर करता है, क्यों, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को प्रवेश नहीं करने देती लक्ष्मी, और जगन्नाथ जी को रोकती है, क्योंकि पहले ये सुभद्रा जाती है तो उसको अंदर जाने देती है, वो बलराम को भी देती है, जगन्नाथ आते तो दरवाजे बंद, और फिर जगन्नाथ जी पूरे ऐसे पॉट भेजते हैं अंदर ना रसगुल्ले के, ताकि थोड़ा मीठा खाएगी तो थोड़ा बदल जाएगी। तो अंदर जाते वो सारा, वो फिर बहुत समय, इस बार तो बहुत समय लगा था, 1:30-2 बज गए, हम तो 5-6 बजे से खड़े थे बिल्कुल रथ के सामने, बहुत क्लोजली सारा देखा, और फिर जब भगवान गए कैसे तो उतरे, और बहुत अमेजिंग था, और लक्ष्मी वहाँ से हटती नहीं है, उतर के मेन गेट में गए, और खोल के रखा था पहले कि ठीक है अभी बहुत हो गया तुम आ जाओ अंदर, फिर गए ना वहाँ भगवान गए जहाँ वो अपाउद होते हो ना मंदिर में घुसते, वहाँ जगन्नाथ जी जाते फिर वो दरवाजा बंद करते हैं, 45 मिनट्स इस बार वहाँ ही खड़ा रखा भगवान को, खोला ही नहीं, फिर उसके बाद खोला, 2 बजे के बाद भगवान अंदर गए उस दिन। तो ऐसा जगन्नाथ की विशेष लीला होती है, जो आते हैं विशेष रूप से अपने भक्तों को मिलने के लिए जगन्नाथ मंदिर छोड़ते और गुंडीचा में आके रहते हैं, इसलिए ये गुंडीचा भी विशेष स्थल है। जगन्नाथ जी अपने आप में बहुत विशेष देव है, इसलिए कलियुगा के जो विग्रह हैं वो कौन से हैं, जगन्नाथ है, कलियुग का धाम जगन्नाथपुरी है, तो ऐसा जो जगन्नाथपुरी है उसका लाभ उठाना चाहिए, और अधिक से अधिक भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारा मन और बुद्धि के लिए फूड मिलेगा, जिससे हमारा स्वाभाविक हो जाएगा फिर भगवान का स्मरण करने के लिए, और फिर जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे, ऐसी भावना आनी चाहिए कि जहाँ जहाँ हम देखे भी तो भौतिक चीज़ों से एक तो आकर्षित नहीं हो पाए, और भगवान को ही या भगवान से संबंधित देख पाए, जैसे बंसीदास बाबा जी महाराज थे, वो रेलवे स्टेशन जाते थे तो वह वो देखते थे कि ट्रेन का पहिया ऐसा गोल है, वो देख के उनको जगन्नाथ की आंखों की याद होती थी, याद आ जाती थी, अच्छा ये मेरे प्रभु की ऐसी आंखें हैं, तो उसी में मग्न हो जाते थे। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ पुरी है ये बहुत बहुत विशेष 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 धाम है, भगवान का दर्शन करने प्रसाद पाने यहाँ आना चाहिए, और उसके साथ साथ भगवान का स्मरण क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए या स्मरण अधिक से अधिक करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इसलिए है, चैतन्य महाप्रभु ऐसा एक भी दिन नहीं लगवाते थे, ऐसा एक भी दिन वर्णन नहीं आया कि महाप्रभु आज जगन्नाथ मंदिर नहीं गए हों, प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाते थे, सुबह उठते थे समंदर स्नान करते थे महाप्रभु, ऐसा वर्णन आता है, स्नान करके चैतन्य महाप्रभु अपने 2 सेवकों को लेकर जाते थे, एक तो काशीश्वर थे और दूसरे गोविंद थे, काशीश्वर बहुत बलशाली भक्त था, हाइटेड, और क्योंकि बहुत भीड़ होती थी तो ऐसे एक हाथ से ऐसे हजार कई लोगों को इधर उधर कर देता था, और जो गोविंद था महाप्रभु का पात्र वगैरह वो संभालता था, तो महाप्रभु जाते थे अंदर तो वहाँ एक गड्ढा हुआ करता था, अभी तो हम पाइप से पाव धोते हैं, वहाँ एक गड्ढा था जिसमें महाप्रभु पाव डुबाते थे, पाव डुबाना मीन चरणामृत हो गया ना वो पूरा का पूरा, पीछे की सारी मंडली सोचती थी बस पान करो, महाप्रभु कहते थे पीने नहीं देना किसी को, ध्यान रखो गोविंद कोई नहीं पीना चाहिए, लेकिन एक बार बंगाल से एक भक्त आया, महाप्रभु ने कहा गोविंद इसको बोलो जितना चाहे उतना पी लो। क्यों? क्योंकि उस भक्त की जो श्रद्धा है वो भगवान के भक्तों का उचिष्ट पाने में और उनका चरणामृत जल पीने में बहुत थी। वो ऐसा भक्त था, झड़ू ठाकुर उनका नाम था, बंगाल में पति पत्नी वो दोनों बहुत महान भक्त थे। वो हमेशा भक्तों का उचिष्ट कहाँ से मिले उसके लिए ढूंढते रहते थे। एक वर्णन आता है कि एक बार बहुत अच्छे मैंगोज उन्होंने खरीदे और किसी भक्त के घर गए, प्रभु जी आपके लिए नहीं हम आम भेंट लेके आ रहे हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। अभी जिसने स्वीकार है ना उसको पता था ये कुछ तो करेगा, हाँ तो उन्होंने कहा हम ले लेंगे आप चलिए घर वापस। तो वो जाते नहीं घर, वो घर के बाहर एक पेड़ था उसके पेड़ के पीछे छुप जाते, वेट ही करते थे कि आम खा के गुठले और छिलके कब बाहर फेंकेंगे। और उन्होंने जब गुठले और छिलके बाहर फेंके बाद में वो चले गए तो इन्होंने वो महा महा खा लिया। ऐसा बहुत उदाहरण आता है उनका। तो ये चैतन्य महाप्रभु परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे ये जो भक्त है इसका भक्तों का वचिष्ट ग्रहण करने में बहुत फेत है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो पहली बार पुरी आए तो महाप्रभु ने आते ही कहा गोविंद को, मैं जब तक ये पुरी में रहेगा मेरा उचित प्रसाद इसी को मिलना चाहिए, महाप्रसाद। और दूसरा जब रोज महाप्रभु दर्शन के लिए अंदर जाते थे तो ये उनके साथ जाते थे, तो महाप्रभु ने जब उस गड्ढे में अपने पाँव डुबाए धोने के लिए तो महाप्रभु ने किसी और को मत अलाउ करो पीने के लिए, कहते इनको ठीक है इसको बोलो जितना चाहे उतना पी लो। तो ये महाप्रभु की उनको कृपा मिलती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ टेम्पल जाते थे और जाते ही चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले नरसिम्हा देव का दर्शन करते थे। जो मुक्ति मंडप है ना वहाँ नरसिम्हा है, वो ब्रह्मा जी ने स्थापित किए थे जगन्नाथ जी को स्थापित करने से पूर्व, तो वो आदि नरसिम्हा है। तो नहीं नरसिम्हा देव है वो। और ये जो प्रेयर हम बोलते हैं ना नरसिम्हा आरती है जो नमस्ते नरसिम्हाय, ये जो शुरुआत की लाइन है ये चैतन्य महाप्रभु बोलते थे नमस्ते नरसिम्हाय। और ये तव कर कमल कर वरे ये उनका है, गीत गोविंद से लिया हुआ है जयदेव गोस्वामी का। वो नरसिम्हा आरती को एक ऑथर का नहीं है, वो दो ऑथर का कम्बाइनेशन है। नरसिम्हा आरती का जो शुरुआत का प्लेस है जो स्टांजाज है वो चैतन्य महाप्रभु गाया करते थे और ये जयदेव गोस्वामी कृत जो गीत गोविंद है वो वहाँ से आता था। तो महाप्रभु चैतन्य रोज सिम्हा द्वार से जाते थे क्योंकि सिम्हा द्वार से जाने से भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना वो बढ़ती है। अभी लोग कुछ व्याघ्र द्वार से हस्ती द्वार से अश्व द्वार चारों गेट है ना जगन्नाथ मंदिर को वहां से जानते, तो जो जो कामना लेकर जाते अलग अलग कामनाओं से लोग जाते हैं हाँ तो वो फिर उनकी पूर्ति हो सकती है लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी भगवान नहीं मिलेंगे। सिम्हा द्वार से जाने से भगवत प्राप्ति निश्चित है। तो ऐसे महाप्रभु जाते थे उस गेट से नरसिम्हा का दर्शन करते थे और फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। चैतन्य महाप्रभु को केवल जगन्नाथ जी को देखना ही अच्छा लगता था। महाप्रभु ना सुभद्रा को देखते थे ना बलराम को देखते थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्रीमती राधा रानी का भाव उन्होंने अपने हृदय में धारण किया है। तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास जाते थे और गरुड़ स्तंभ से आगे जाकर दर्शन नहीं करते थे, वहीं खड़े होकर दर्शन करते थे क्योंकि वो वहां से कौन दिखते है? आप कभी आज भी मैं सुबह खड़ा था काफी देर वहां तो ओनली जगन्नाथ दिखते हैं बड़ी बड़ी आंखें। और चैतन्य महाप्रभु वहां जो दीवार है उसमें अपना हाथ रखते थे तो उनकी तीन उंगलियां वहां अभी भी निशान है और महाप्रभु वो पत्थर पिघल गया क्योंकि इतना प्रेम भगवान के प्रति प्रेम की भावना इतनी अधिक महाप्रभु ने प्रकट की। तो सारे वैष्णव या आचार्यगण कहते हैं कि आज तक ऐसी भगवत प्रेम की भावना ना शास्त्रों में वर्णित है ना आज तक किसी ने प्रकट की है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु एक दिन दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ का तो उनके चरणों के नीचे जो मंदिर में पत्थर था वो पिघल गया। सोचो पत्थर पिघल गया, हमारा हृदय नहीं पिघल रहा है इतने सालों से हाँ वो पत्थर पिघल गया महाप्रभु के स्पर्श से, और पूरे महाप्रभु की हाइट कितनी थी? 7 फुट। हाँ 7 फुट हाइट थी चैतन्य महाप्रभु की। अजानुलंबित भुजो कनकाव दातो कि वर्णन वृंदावन दास ठाकुर पहला श्लोक लिखते हैं चैतन्य भागवत में, वो शुरुआत ही करते कि उनके अजानुलंबित भुजा, महाप्रभु की भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, और ऐसी भुजा और इतनी उनकी हाइट थी चैतन्य महाप्रभु की। तो वहां जब वो पत्थर पिघला तो, और ये भी आता है कि केवल पत्थर ही नहीं पिघला, महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते थे तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी, और वहां ऐसे जो पत्थरों में ऐसे इकट्ठा हो जाती थी बहुत सारा जल, तो ऐसे पत्थर पिघला तो राजा ने क्या किया, वो पत्थर वहां से खुदवाया और लेके अपने महल में वो पूजा के लिए ले गया। तो सारे जो भक्त थे वो दुखी हो गए कि ये राजा को ही ये लाभ मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु के चरणों की आराधना करने का, हमारे सारे गौड़िया वैष्णवों को क्यों नहीं। तो फिर राजा ने अपने महल से वो चरण का पत्थर है वो लाया, और जगन्नाथ मंदिर में हमने कल दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, तो वो वहां स्थापित किया है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया करते थे, और एक बार तो हद हो गई, चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, एक हाथ उन्होंने गरुड़ स्तंभ में रखा था और इतनी भीड़ थी, एक उड़िया एक बूढ़ी औरत आ गई और उसके हृदय में इतना प्रेम, मैं तो जब भी आता हूँ तो मैं माताओं को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ये उड़िया माता जी सारी, वहाँ बूढ़ी माताएं हैं लेकिन उनको सारा जगन्नाथ अष्टकम, इतनी प्रेयर उनके मुख से है। आज भी मैं खड़ा था, एक माता जी उड़ीसा की, आप देखो सर्वसाधारण लोग होते हैं वो, ऐसे नहीं लगता कि पढ़े लिखे है वगैरह, लेकिन उनके हृदय में भगवान के लिए बहुत प्रेम की भावना है, इतनी प्रार्थनाएं हैं, हम खड़े रहते समझ में नहीं आता क्या बोलते रहे भगवान के लिए। उनके मुख से आज मैंने देखा सारा वो आया, वो जो उनका जो सॉन्ग है सालबेक का आहे नील वो सॉन्ग गा रहे थे, जगन्नाथ अष्टकम और जयदेव गोस्वामी का वो गीत गोविंद सारा ऐसे निकलते जा रहा था। और जो उड़िया भागवत है जगन्नाथ भागवत, मुझे थोड़ा सा शुरुआत के कुछ श्लोक आते हैं तो उसमें से वो माता जी गा रहे थे, मैंने कहा ये तो पूरा 2-3 अध्याय ऐसे भगवान के सामने गाते जा रहे थे। आज मैं सुना तो मैंने कहा देखो कितना डिवोशन है, कितना स्वाभाविक प्रेम है, और कई बार देखा कि वो प्रेयर्स करते करते रो रहे हैं कई बूढ़ी माताएं भी ना, और मैं हर बार सोचता हूँ कि जगन्नाथ अष्टकम पूरा याद करके आऊँगा अगली बार, थोड़ा याद हो जाता है फिर यहाँ आके भूल जाता हूँ, और वो तो बिल्कुल बस हाथ ऊपर कर दिए और जगन्नाथ के लिए गा दिए, जगन्नाथ उनके हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे जब दर्शन कर रहे थे इतनी भीड़ हो गई, ये उड़िया बूढ़ी माता जी आ गई, वो इतना भगवान को देखने के लिए हृदय में लालायित थी कि वो चढ़ गई वो गरुड़ स्तंभ पर और एक पाँव महाप्रभु चैतन्य के कंधे में रख दिया। देखो अभी चैतन्य महाप्रभु के कंधे में पाँव रखा, हाथ से ऐसा गरुड़ स्तंभ पकड़ा और देख रही है जगन्नाथ को, कितना प्रेम की भावना हो गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु का सेवक था गोविंद, उन्होंने देखा अरे ए उतर नीचे कहाँ ऊपर, और वो भी महाप्रभु चैतन्य के कंधे पर। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु कहते अरे मूर्ख नहीं, उसको करने दो दर्शन जितना समय करना है, बल्कि सन्यासी होकर भी वो श्री एक पाँव रख रही है उनके ऊपर, महाप्रभु श्री शब्द सुन के भी भागते थे चैतन्य महाप्रभु, आप सोचो। तो लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं महाप्रभु, वो बूढ़ी माता जी देखती जा रहे जगन्नाथ को। फिर थोड़ी देर में नीचे उतरती है और महाप्रभु जो गोविंद था उसको एक शब्द कहते आदिवास्या कहते, तुम आदिवासी हो, उसको उतार रहे हो नीचे। तो महाप्रभु फिर रोने लगते, चैतन्य महाप्रभु कहते देखो इस स्त्री के हृदय में भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए जितनी व्याकुलता है उसका एक अंश भी मेरे हृदय में आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महाप्रभु कहते आरती शब्द यूज करते, इसके हृदय में कितनी आरती है, कितनी व्याकुलता है भगवान को देखने के लिए। हमारे हृदय में भगवान को देखने की व्याकुलता, टीवी देखने की व्याकुलता है, चैनल चेंज करते रहते हैं ना लोग, लेकिन भगवान को देखने के लिए कोई व्याकुलता नहीं है। समंदर को देखने के लिए व्याकुल है हाँ, लेकिन भगवान को देखने के लिए व्याकुल नहीं है, तो सोचो कितना दुर्भाग्य है। तो महाप्रभु कहते जीवन की सफलता यही है कि थोड़ी भी व्याकुलता हमारे हृदय में आ जाए, किसको देखने के लिए? जगन्नाथ को देखने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ जी उस व्यक्ति के हो जाते हैं जो उनको देखने आता है। क्योंकि भगवान, हम तो अपने छोटे छोटे आंखों से देखते ना, भगवान कितनी बड़ी आंखें उनकी, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हाँ अपने भक्त को। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां से दर्शन करते थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी एक बार वहां से, वो भी नहीं जाते थे आगे, भक्ति सिद्धांत महाराज भी वहां से दर्शन करते थे। तो एक भक्त ने पूछा, गुरुदेव आप तो आगे जाके करो ना, हम जैसे कैसे लड़ाई झगड़े कर दे, पूरा आगे होना चाहिए, पूरा किसी के सर में पाव दे चलेगा, मुझे आगे जाके खड़ा होना है। भगवान के बारे में कुछ समझ में आए ना आए क्या है, जनरली यहाँ जो पंडित पकड़ के ले जाते हैं, अभी जनरल लोग आते हैं उनको पता नहीं क्या है, कहते वो जो काला दिख रहा है ना, काला वो भगवान है, वो जगन्नाथ है, वो सफेद पीला, हाँ उतना ही समझ में आता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज वह गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन कर रहे थे, तो एक भक्त ने पूछा कि आप यहाँ से क्यों दर्शन करते हैं? तो कहते देखो मैं क्या भगवान को देखूंगा, मैं तो ये जो गरुड़ जी है ना उनके पास इसलिए खड़ा रहता हूँ क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने एक भक्त को रोज अच्छी तरह से देखते हैं, और वो कौन है? गरुड़ जी है। जब उनके, गरुड़ जी के चरणों में खड़ा रहूंगा तो भगवान उनको देखते रहते, उनसे प्रेम करते गरुड़ से, तो वो थोड़ा सा मुझे भी देख लेंगे, इससे मुझे क्या मिलेगी? उनकी कृपा मिलेगी। तो ये भावना उनकी थी। तो इस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर में हर एक जो चीज है ना उसके पीछे कथा ही कथा है। ऐसे लगता है मंदिर बड़ा है, उतनी उससे बढ़कर क्या है जगन्नाथ मंदिर में? कथाएं हैं, उनका भगवान का महिमा है, हर एक चीज वहां बोलती है। हाँ, जैसे वो चक्र है, सुदर्शन चक्र भी है, या इतने सारे हनुमान भी हैं, कितने सारे मंदिर हैं, वो हर मंदिर के पीछे क्या है? भगवान जगन्नाथ का हाथ है। वैसे हाथ तो दिखाई नहीं देते उनके, लेकिन उनकी लीलाएं हैं। तो ऐसा जो श्री क्षेत्र है, जगन्नाथ का स्थान है, वो भगवान की कथाओं से भरा पड़ा है। इसलिए संसार में किसी से प्रेम करना है तो किससे प्रेम करो? किससे? भगवान से, जगन्नाथ से। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो आपका सबसे प्रेम हो जाएगा। जैसे कोई स्त्री, उसकी शादी हो जाती है युवती की, तो वो अपने पति से प्रेम करती है तो सबसे क्या होता है? उसका प्रेम का संबंध हो जाता है। उसको अलग से सास से प्रेम करना नहीं पड़ता, इससे उससे प्रेम नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो सबसे हम क्या कर पाते हैं? प्रेम कर पाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी से प्रेम होगा जब हम उनके नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए भगवान आनंदित होते हैं जब उनके नामों का व्यक्ति उच्चारण करता है, जप करता है और उनकी सेवा करने का प्रयास करता है। तो हम तो 10:30 तो बजा ही दिए हमने, तो काफी समय हो गया है। तो ऐसा जगन्नाथ कथा ही कथा है। भक्त हो फिर और अच्छा, भक्तों के संग में चर्चा करने में आनंद का वर्धन होता है। हरे कृष्णा, जगन्नाथ स्वामी की, गुंडीचा यात्रा की, निताय गौर प्रेमानंदे।